गाथा, रूह वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी मेला। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पहुंच गई चरनी मासी। पहले कभी उनके घर आई नहीं थी, पर उन्होंने पता ठिकाना ढूंढ निकाला। अंकल चिप्स की छोटी सी डायरी में उनके पोते के हाथ की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में दर्ज था, सत्य प्रकाश 227 मालवीय नगर इलाहाबाद। उनके साथ चमड़े का एक बड़ा थैला, बिस्तर बंद और कनस्तर उतरा और उतरे उन जैसी ही गोल मटोल उनके सत्संगिन प्रसन्नी। स्टेशन से चौक के रिक्शे वाले ने मांगे 4, मासी ने दे डाले 5 रुपए। तीरथ पर आई है, किसी का दिल दुखी ना हो, पुण्य कमा ले। इतनी ठंड में 2 सवारी खींच कर लाया है रिक्शे वाला। चाय पराठे के बाद उनके लिए कमरे का एक कोना ठीक किया गया तो बोली, रहने दो, घंटे भर बाद स्वामी जी के आश्रम में जाना है। सत्य ने कहा, थोड़े दिन घर में रह लो मासी, वहाँ बड़ी ठंड है। तीरथ करने निकली है, गृहस्थी विच नहीं रहना। अच्छा मासी, यह बताओ आप तीरथ पर क्यों निकली हो? ले, मैं क्या पहली बार निकली हूँ? सारे तीरथ कर डाले मैंने, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुष्कर जी, गया जी, नासिक, उज्जैन, बस प्रयाग का यह कुंभ रह गया था, वह भी पूर्ण हो जाएगा। मासी आप इतने तीरथ क्यों करती हो? ले, पाप जो धोने हुए। भांजे की आंखों में शरारत चमकी, कौन कौन से पाप आपने किए हैं? सत्य प्रकाश मासी से सिर्फ 6 साल छोटा था। नानके में उसका बचपन इसी मासी को छकाते खिजाते बीता था। चरनी मासी हंस पड़ी, एकदम स्वच्छ दांतों वाली भोली भाली निष्पाप हंसी। जब वे निरुत्तर होने लगती हैं, तो स्वामी जी की भाषा में बोलने लगती हैं। पाप सिर्फ वह नहीं होता जो जानकर किया जाए, अनजाने भी पाप हो जाता है, उसी को धोने। अनजाने पाप में उनके स्वामी जी के अनुसार बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना जैसे गांधीवादी निषेध थे। सत्य की पत्नी चारू साइंस की टीचर है। उसने कहा, मासी आपसे भी तो लोग अनजाने में कभी बुरा बोले होंगे। जैसे 0 से 0 कट जाता है, पाप से पाप नहीं कट सकता क्या? नहीं, पाप से पाप और मैल से मैल नहीं कटता। पाप की काट पुण्य है, जैसे मैल की काट साबुन। मलमल धोऊं दाग नहीं छूटे, जैसे भजन के बारे में आप क्या सोचती हैं? छोटे मोटे तीरथ पर यह तो मुश्किल आती होगी। प्रयाग का महाकुंभ तो संसार में अनोखा है, तुम गर्म पानी से नहाने वालों क्या जानो। मासी ने आया दी हट्टी के लड्डुओं का पैकेट पीपे में से निकाल कर चारू के हाथ में दिया और कहा, तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अघ पूर्ण सावन। चारू सोचने लगी, 10 बरस से तो मैं इन्हें जानती हूँ, जगत मासी है ये, हर एक के दुख में कातर, सुख में शामिल, ना किसी से वैर ना द्वेष, पड़ोस में सबसे बोलचाल, रिश्तेदारों में मिलनसार, परिवार में आदरणीय, यहाँ तक कि बहुएं भी कभी इनकी आलोचना नहीं करती। ऐसी प्यारी चरनी मासी कुंभ पर कौन से पाप धोने आई है कि घर की सुविधा छोड़ वहाँ खुले में रहेंगी? पर मासी नहीं मानी, सूरज डूबने से पहले चली गई। पेशे से पत्रकार है सत्य, मगर दोस्तियाँ उसकी हर महकमे में है। इसलिए जब SP कुंभ ने कहा, कवरेज आपके रिपोर्टर करते रहेंगे, एक दिन खुद आकर छटा तो देख जाएं। अभी मेला क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था सत्य और चारू ने कि मेले का समा नजर आने लगा। सोहबतिया बाग से संगम जाने वाले मार्ग पर भगवे रंग की एम्बेसडर गाड़ियां दौड़ रही थी। 5 सितारा अध्यात्म पेश करने वाले विशाल जटाजूट धारण किए साधु संत फकीर रंग बिरंगे यात्रियों के रेले में अलग नजर आ रहे थे। दूर से गंगा तट पर असंख्य बांस बल्ली के चंदोबे तने हुए थे। कहां घर में रजाई में बैठे हुए भी ठंड से ठिठुर रहे थे, कहां मेले में ठंडे कपड़ों में बूढ़े जवान, अधेड़ स्त्री पुरुष और बच्चे एक धुन में चले जा रहे थे। सबसे अच्छा दृश्य था किसी टोले पर सड़क पार करने का उपक्रम। सब एक दूसरे की धोती या कुर्ते का छोर पकड़ रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह चल रहे थे। ठीक 11 साल 86 दिन बाद पड़ा है ये महाकुंभ। शहर इलाहाबाद नहीं, शत प्रतिशत प्रयाग है आजकल। अनेकानेक यज्ञ की पावन भूमि पूर्ण कुंभ के महात्म्य से महामंडित है। इस अवधि का हर दिन भक्ति ध्यान और स्नान के लिए शुभ है। यूं तो यात्री यहाँ पूरे साल आते हैं, पर इस माह यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। सर्वाधिक चहल पहल के स्थल हैं संगम तट, भरद्वाज आश्रम, अमृतवट और अक्षयवट। लगता है वेद पुराण आख्यान तीनों आप चलकर समीप आए हैं। अद्भुत मेला है यह, इतने वर्ष बाद आता है। न जाने कहां कहां से इसमें भीड़ उमड़ जाती है। ना कोई किसी को निमंत्रण भेजता है ना बुलावा, बस लोग है कि उमड़े चले आते हैं। स्नान करना हो तो बजरा मंगवाया जाए, कप्तान साहब ने पूछा। सत्य हंस दिए, उसकी इन बातों में कोई आस्था नहीं। हमारा इरादा तो आज घर पर भी नहाने का नहीं था, उसने कहा। मैं सुबह सुबह ही नहा चुकी हूँ, चारू ने सफाई दी। मेले में मकर संक्रांति पर कितने नहाए इस बात पर अधिकारियों में बहस है। प्रेस और पुलिस के अलग अलग आंकड़े हैं। अखबार में छपा है 13 लाख तो, पुलिस का दावा है 26 लाख। शाम को रेडियो ने कहा 10 लाख से ऊपर नहाए हैं। प्रशासन के अफसर कूद कूद कर आंकड़े सप्लाई कर रहे हैं। पत्रकार नाम का जीव देखते ही पत्रकारिता वाला गंगाजल मंगवाते हैं। अरे द्विवेदी जी, आप अब आ रहे हो, भीड़ तो भोर से नहा रही है। क्या कहा 25? अजीब 35 तो 2 घंटे पहले नहा चुके थे। दरअसल स्नानार्थियों की घोषित संख्या से ही सरकारी बजट में डाइव मारने की गुंजाइश निकलेगी। द्विवेदी जी अपनी बंदर टोपी में से सवाल फेंकते हैं, डूबे कितने? कप्तान साहब के पीछे कई मातहत खड़े हैं। एक भी नहीं, सब कोरस में कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 केस हुए थे, चारों को बचा लिया, एक को भी डूबने नहीं दिया गया, कौमी एकता के रिपोर्टर रिजवी ने कहा। दीन मोहम्मद तो कह रहा था वहाँ झूसी के कटान के पास 7 लाशें निकाली गई आज। अब आप मूंगफली वाले से डिटेल लेंगे तो यही होगा, वह तैराक को लाश बताएगा और लाश को कंकाल। कुल मिलाकर प्रेस को आभास मिल जाता है कि प्रशासन के अधिकारियों में अद्भुत तालमेल है। प्रशासन मुदित है, ऐसा मलाई बजट स्वीकृत किया है केंद्र और प्रदेश सरकार ने कि कई पीढ़ियों का महाकुंभ हो गया। तार दिया गंगा मैया ने, बीवी बच्चे रिश्तेदार पड़ोसी सबको खुश कर दिया। मातहतों के मुंह भी हरे हो गए, बरसों से सूखे पड़े पेड़ों की सिंचाई हुई है इस बरस। गाड़ियों का काफिला पुलिस और प्रशासन की छोलदारियों में झूम रहा है, सफेद हाथियों सा। जब गाड़ी सरकारी हो, ड्राइवर सरकारी हो, पेट्रोल भी सरकारी हो और सवारी निजी हो, फिर ना पूछिए मस्ती। सर्दी में भी गर्मी लगती है, दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय माँ गंगे जय माँ गंगे। संगम स्थल आज वहाँ नहीं है जहाँ पहले था, गंगा ने विशाल भू क्षेत्र छोड़ दिया है। आजकल संगम पर जल टकराने की वह ध्वनि तो सुनाई नहीं देती जो भगवान राम ने प्रयाग आने पर सुनी थी। सरिता द्वय जल टकराने का नाद सुनो दे रहा सुनाई। लेकिन श्वेत श्याम धारा का मिलन एक रोमांचकारी अनुभूति देता है। जितनी देर जल की ओर देखें, मन जीवन के रहस्यवाद का अन्वेषण करता है। नदी के विस्फारित नेत्रों जैसी नावें चली जा रही हैं, यात्रियों को लाती ले जाती। कभी उनकी मचान या लकड़ी के फ्रेम पर रिवर गर्ल बैठ जाती है जलपाखी। यात्री पानी में आटे की गोलियां और लाई डालते हैं। रिवर गर्ल कई बार हवा में ही लाई लपक लेती है। उनकी भगवा चोच और पंजे देखकर लगता है या तो वे सन्यासी हो गई हैं या भाजपा के सदस्य। कुंभ क्षेत्र में साधुओं की भी त्रिपगधा है, सच्चे पाखंडी और मक्कार। यहाँ धर्म आस्था और आडंबर का संगम चल रहा है। हर चीज यहाँ 3 के पहाड़े में है, जैसे त्रिवेणी से ही सीखा है यह। होमगार्ड पुलिस पीएससी, गुरु गोविंद और शिष्य, भक्त बगुला भक्त और अंधभक्त। मासी की ऐनक टूट गई, सत्य ने कहा। चलकर मासी को ले आते हैं। ऐनक बनने के साथ साथ वे दो दिन घर में रिलैक्स भी कर लेंगे। गलन हवा और धूल को चुनौती देता मेला पहले से भी ज्यादा गुलजार हो गया था। मौनी अमावस्या दो रोज बाद थी, पर यात्रियों के रेले अभी से आने शुरू हो गए थे। ज्यादा स्त्रियां बूढ़ी, अधेड़ और जवान, अनुपात में पुरुष कुछ कम। वे सारे के सारे महीने टिकते भी नहीं हैं। एक दो प्रमुख स्नान दिनों का लाभ उठाकर लौट जाते हैं वापस दुनिया की ठेकेदारी में। अपने निजी पाप पुण्य का गट्ठर अपनी स्त्रियों को थमा वे चल देते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एक दो डुबकी लगाने से उनके समस्त पाप धुल गए। काली सड़क के किनारे किनारे यात्री एकदम खुले आसमान के नीचे चल पड़े थे, अपने कंबलों में गुड़ी मुड़ी हुए, सामान के नाम पर एक बोरा एक कंबल। जगह जगह शिविरों में कीर्तन प्रवचन चल रहा है, पंडालों में भारी भीड़। जिनको ज्यादा ठंड लग रही थी वे जहाँ बैठे थे वहीं से बुदबुदा रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम। महामंडलेश्वर मार्ग पर पंजाब से आए संतों की धूम थी, भक्त भी सलवार सूट वाले। हर शिविर के सामने कार और वैन, कहीं कहीं अपनी ट्रक भी, गोया एक छोटा मोटा पंजाब। सभी स्वामियों के चोंगे महंगे टेरिकॉट के दिखाई दे रहे थे। स्वामी अरूपानंद, सरूपानंद, केवलानंद, विनोदानंद। सत्य और चारु स्वामी जी के शिविर में पहुंचे। मासी तंबू में नहीं थी, उन जैसी कुछ और महिलाएं थी। एक महिला अपनी मोटी सी रजाई में मुंह छिपाए लेटी थी। भनक पाकर उसने सिर्फ अपनी आंखें निकाली। अरे मेरा काका तो नहीं आया है? कत्थई कॉट्सवूल का सूट पहने हुए वृद्धा ने सत्य से कहा। तू पटेल चौक वाला दा मुंडा है ना, मास्टर जी दे घर दा? सत्य के हाँ कहने पर वह प्रसन्न हो गई। उसने अपने साथिन से कहा, मैं इस दे सारे टब्बर नु जान दिया। चरनी मासी थी नहीं, स्वामी जी का एक शिष्य पंडाल में उन्हें ढूंढ कर आया। वह अपने सत्संग के साथ बांस कहीं कहीं है, आप लोग बैठो, आती ही होंगी। स्वामी की कुटी वाकई में पर्ण कुटी थी, फूस के ऊपर मिट्टी की मजबूत परत लिपी थी। शामियाना प्रिंट के तंबू के चारों ओर सफेद व भगवा कपड़ा लपेट उसे आश्रमी शक्ल दी गई। वहां गुदगुदे गद्दे, भगवा चादरे, लाल और सफेद साटन की गद्दियां और गद्दियों पर मखमल से बने स्वस्तिक चिन्ह थे। शिष्य की देह देखकर गुरु के स्वास्थ्य का अंदाजा मिलता था। अभी वे प्रस्तावित चाय के लिए नाना कर ही रहे थे कि मासी वापस आ गई। ले तू अच्छे बैठा है, मैं तेनु फोन करन पीछी हो गई सी, मुझे खबर मिल गई थी। कैसे टूटी है नक? अब तक मासी प्रसन्नी के कंधे का सहारा लेकर मजे से सारे काम चला रही थी। ऐनक का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर उत्तेजना खिंच गई। मत पूछ की होया, मैं तो मर चली सी, भला हो खाकी वर्दी वाला दा। मैंनू खींच के बाहर निकाला। तंबू की कई औरतों की मिलीजुली बातों से पता चला कि रात 3:30 बजे तारा डूबने से पहले स्नान का मुहूर्त था। मासी और चार साथी ने शिविर से स्नान के लिए निकली। उन जैसी उत्साही श्रद्धालुओं की खासी भीड़ थी। उसी समय शाही स्नान के लिए अखाड़े का जुलूस भी वहां पहुंचा। हालांकि पुलिस आमतौर पर अखाड़ों के स्नान के समय मामूली स्नानार्थियों को जल में उतरने की इजाजत नहीं देती, पर जो पहले से ही बीज धारा में स्नान कर रहे थे उनका क्या किया जाए। अखाड़े के 125 साधुओं ने आते ही प्रशासन के इंतजाम की आलोचना आरंभ कर दी। पुलिस ने माइक पर निवेदन किया कि सब स्नानार्थी गंगा जी से निकल आए, पर इतनी जनता के निकलने में कम समय नहीं लगा। ऊपर से अखाड़ा प्रबंधकों के हेकड़ते वर एक तरह से बीच धार से घाट तक भगदड़ ही मच गई। अधिकांश स्नानार्थी बूढ़े और अशक्त, गीले कपड़ों में लटपट चाल, न उनसे जल्दी धारा काट कर चला जाए न अपने कपड़े ढूंढे जाए। सैकड़ों बालू के बोरों के बावजूद यात्रियों के पैरों के दबाव से किनारे किनारे खूब रपटन और कीचड़ थी ही। औरतें फिसल फिसल कर वापस नदी में गिरी। मासी उसी भगदड़ में फंस गई। किसी की कोहनी से चश्मे की कमानी टूट गई और लेंस चटक गया। मासी को वह सारा अनुभव फिर से याद आया। सत्य घबरा गया। मासी तुम घर चलो, यहाँ नहीं रहना, 2 दिन घर में आराम कर लो, बहुत हो गया गंगा स्नान। ले 2 दिन बाद तो मौनी अमावस्या है, वह तो मैं जरूर नहाना। ठीक है उस दिन आ जाना। उस दिन आ नहीं होना, बहुत भीड़ आएगी, स्वामी जी ने कहा है कोई कैंप से जाए ना। सत्य तिलमिलाता रहा। सन्यासियों का भी शाही स्नान हो रहा है। शाही कोरमा, शाही पुलाव तो सुना था, पर शाही स्नान कभी नहीं सुना। काफी देर की निष्फल बहस के बाद यह सोचा गया कि सत्य ऐनक बनवा कर लाए और दो दिन चारू कैंप में रुके मासी की देखभाल के लिए। मासी ने लाख समझाया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर वे लोग नहीं माने। चारू के लिए यह एकदम नया अनुभव था, दुर्लभ और जीवंत दृश्य। मनुष्य के आचार व्यवहार, श्रद्धा भक्ति, दिनचर्या और कैंप अनुशासन के बीच खिचकोले लेते अनेक सवाल बवाल, पर इस सब में भी एक अद्भुत सह अस्तित्व की भावना। खूब घूमी चारू, किसी कैंप में तो कभी किसी कैंप में। माइक पर मंत्रोच्चार, भजन और उद्घोषणाओं की त्रिवेणी प्रवाहित थी। काली सड़क पर ठहरे मनमोहक वैश्य भूले भटके शिविर में आकर अपनी मामी से मिले, जो गाजीपुर से आए हैं। रामघाट के पास 3 साल की एक बच्ची मिली है, जो अपना नाम बेबी बताती है। उसके माता पिता लाल सड़क पुलिस चौकी से उसे ले जाए। कुंभ के शुभ अवसर पर पंडाल नंबर 11 में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है। आप सब महानुभव पधारकर कविता का आनंद लें। सांस्कृतिक पंडाल में आज शाम उषा नारायण का नाच होगा। सभी आमंत्रित हैं, सबका स्वागत है। हर भाषा का भजन सुनने को मिल रहा था। मासी के कैंप में भजन के साथ साथ भक्त और भक्ति ने नाच भी उठती। मेरे श्याम नू रास विच नच लेने दे, नी नच लेने दे, खाया मक्खन भतेरा उन उपच लेने दे, नी मेरे श्याम नू रास विच नच लेने दे। रात में भोजन के बाद अपनी अपनी रजाइयों में स्थापित होने के बाद सत्संगी ने आध्यात्मिक गीतों की ओर उन्मुख हो जाती। मैं भूल गई दाता, मैं भूल गईया, धर्म दा राह छड़ ओझड़ पईया, आज दी ना भूली मैं कल दी ना भूली, जन्म जन्म दी आई हुरुल दी, सोच समझ कर देख ले मनुआ, यह सब नाल किसी दे ना जईया। कभी कोई देवी माता का मंचला गा उठता, ट्रेन ट्रेन मंदिरों से माने टेलीफोन किया है, जिसे राम की धुन लगी वह राम नाम में लगा रहा। यानी हर एक के लिए वहां कार्यक्रम था, चुनाव की विशाल स्वतंत्रता। चारू को लगा बूढ़ों के लिए रिलैक्स करने का इससे अच्छा स्थल हो ही नहीं सकता। सिर पर थी स्वामी जी की दी हुई सुरक्षा, पेट में भंडारियों का बनाया भोजन, स्नान को गंगा तट और अंटी में रुपए, जो परिवार ने पुण्य कमाने के नाम पर जी खोल कर दे रखे हैं। सबके चमकते चेहरे देखकर लगता था इनके लिए धर्म एक पिकनिक है और पुण्य एक गंगा जली, जो ये अपने साथ ले जाएंगे यादगार की तरह। लेकिन सामान्य तीर्थ यात्रियों का जीवन इतना सुखद नहीं बीत रहा था। मौनी अमावस्या की पूर्व सांझ से ही आकाश में बादल घिर आए थे, गलन बढ़ती जा रही थी। शाम 4 बजे ही अंधेरा हो चला, लेकिन बिगड़ते मौसम और ठंड को धता बताते जन समूह अभी भी उमड़े चले आ रहे थे। कभी कभी कोई यात्री दिखाई देता, पीठ पर अपनी वृद्ध जर्जर दादी को लाद कर लाता, श्रवण कुमार का छोटा भाई। कहीं कोई औरत अपने नन्हे से शिशु को आंचल की गर्मी में छुपाए पैदल चली आ रही थी। सबके मन में एक ही आस थी, मौनी अमावस्या पर बस एक डुबकी लगा ले। इन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब तक के इनके जीवन में जो कुछ भी अधम विषम हुआ है, वह संगम की धारा में सुबह धुल कर पुछ कर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा और वे स्वर्ग में एक सीट आरक्षित करवा लेंगे। चारों भारतीय जनमानस की आस्था का स्पर्श पाकर अभिभूत थी, तो दूसरी तरफ साधु महात्माओं द्वारा परोसी जा रही पाप पुण्य की इतनी तुरंत फुरत भुगतान पद्धति की स्थापना पर विस्मित। हर अखाड़े का अपना सरजाम, हर संत की अपनी पताका, बहुत से स्वामियों ने अपने अपने बिल्ले जारी कर रखे थे, व्यवस्था पक्की, उनके मैनेजर चुस्त घूम रहे थे, बिना बिल्ले वाला आदमी घुस नहीं सकता, सबके अपने चौकीदार, अखाड़े के पहरेदार हनुमान मुद्रा में गदा हाथ में लिए खड़े थे, नागा साधुओं का प्रहरी बर्छे लिए हुए, महंतों की देह पर चर्बी के टायर चढ़े हैं, सन्यासी कृष्काए हैं, स्त्री साधुओं के चेहरों पर पुरुषों से ज्यादा तेज था। ब्रह्म कुमारी आश्रम में खूबसूरत कमसिन लड़कियों को योगिनी वेश में देखकर चारू को पीड़ा और जिज्ञासा दोनों हुई। बिना गहरे आघात के इस उम्र में कोई सन्यास नहीं लेता, पर यह सब पहली मुलाकात में पूछा भी नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा ग्लानी अपने ऊपर हो रही थी चारू को। उसी के नगर में इतना जन समूह उमड़ा पड़ा है और वह इस सबसे अनभिज्ञ रही है। मासी न आई होती तो वह यहाँ झांकती भी नहीं। शायद उसके अंदर पाप और पुण्य के सवाल अभी वैसी आंधी नहीं मचाते। उसे हैरानी थी कैसे जीवन के सबसे सूक्ष्म सवालों का इतना स्थूल और सार्थक कारोबार चलाया जा रहा था। अच्छे से अच्छा सैनिटरी एक्सपर्ट इस स्नान अभियान के आगे निरुत्तर हो जाता कि संगम में एक डुबकी न केवल इस जन्म के वरन जन्म जन्मांतर के पापों का मज्जन करती है। मानो एक बार आप नहा ले तो प्रतिदिन अपने आप पाप फ्लश आउट होते रहेंगे। पापों का सुलभ इंटरनेशनल इत्यादि। मेले में विदेशी भक्तों की भी कमी नहीं। इस्कॉन का कलात्मक शिविर तो कृष्ण भक्तों से भरा पड़ा है। जहाँ सुर के भजनों का कैसेट बजता है तो वे विभोर होकर नाचते नाचते लड़खड़ाने लगते हैं। ठंड शॉल को लगातार परास्त कर रही थी। चारू ने एक जगह रुककर ठेले वाले से एक कप चाय ली। उसके हाथ ठंड से इस कदर कांप रहे थे कि आधा कप चाय चारू के हाथ पर छलक कर फैल गई। अपने पर थोड़ा काबू पा उसने आश्चर्य से चाय की तरफ देखा। तभी किसी ने कहा, मे आई हैव द प्लेजर। एक विदेशी युवक था। उसने अपनी तरफ उंगली दिखाई। मी हैरी जॉन। गेरुए कुर्ते और जीन्स में वह कुछ कुछ भव्य लग रहा था। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, शांति। पर यहाँ मेले में तो शोर है। बट देयर इज नो वायलेंस, आई फील हैप्पी हियर। सबका अनुभव हैरी जैसा सुखद नहीं था। उस दिन कप्तान साहब के कैंप में चर्चा थी उस फ्रांसीसी लड़की अनातोले की, जो चरस और मोक्ष के लालच में नागाओं के शिविर में चली गई थी। एक बाबा जो काफी देर से दम लगाए बैठा था उसके पीछे पड़ गया। अनातोले वहां से बदहवास भागी तो सीधी पुलिस कैंप में पहुंची। दो सिपाहियों के संरक्षण में उसे उमेश तांत्रिक के शिविर में पहुंचाया गया। वह वही ठहरी हुई थी। गुरुजी ने उसे तत्काल कॉपोज की गोली दी, समझाया और सोने भेज दिया। दरअसल सारा मेला गुरु परंपरा की स्थापना और पब्लिसिटी करना प्रतीत होता है। हर भक्त की अपने अपने गुरु में गहन आस्था। स्त्री भक्त तो गुरुओं की कृपा के लिए जान लुटाने को आतुर। मासी अपने स्वामी के पास ले गई चारू को मत्था टेकने। गुरुजी महाराज इसे आशीर्वाद दो, बहू है आपकी। मासी ने पहले ही समझा रखा था। चारू ने 51 रुपए से मत्था टेका। स्वामी जी का चेहरा तरबूज की तरह लाल था। अपने सिंहासन पर आसीन वे बड़ा सा तरबूज लग रहे थे। चारू को लगा यह एक दिव्य नहीं दम्भी गुरु का रूप है। लेकिन वे लगातार मुस्कुरा रहे थे। पूछो पूछो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछो, स्वामी जी ने कहा। चारू ने साहस किया। ये लाखों लोग अपने पाप धोने आए हैं, क्या ये एक नेगेटिव एक्ट नहीं है? ये पुण्य की भावना से आए हैं, इनकी भावना शुद्ध है। साधारण लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते, लेकिन पुण्य पहचानते हैं। श्रद्धा का रूप सत्कर्म है, सत्कर्म पॉजिटिव एक्ट है। मासी असीम आदर से स्वामी जी की बात सुन रही थी। बीच बीच में वे चारू की ओर इशारा करती, देख लिया मेरे गुरु महाराज कितने विद्वान हैं? चारू ने कहा, आपकी समस्त भक्ति ने बुजुर्ग हैं। इन्हें आप यह क्यों नहीं समझाते कि बेटों के विवाह करते समय ये दहेज न लें? ये भी पाप है। क्या तुम्हारे विवाह में दहेज लिया गया? स्वामी जी ने प्रतिप्रश्न किया। नहीं, किंतु परंतु कुछ नहीं। परिवर्तन आ रहा है पर धीरे धीरे आएगा। तुम्हारी यह बात गलत है कि सिर्फ बूढ़ियां हमारे कैंप में आती है। हमारे पास विचार दर्शन है, आपकी पीढ़ी के पास धीरज की कमी है। विपन्न, इनको 11 नंबर में ले जाओ। 11 नंबर में स्त्री साधुओं का कैंप है। यहाँ गद्दे गुदगुदे और रजाइयां मखमली थी। हर स्वामिनी ने फूस की दीवार में टूथपेस्ट की ट्यूब और टूथपेस्ट खोसा हुआ और कंघा और अखबार। स्वामिनी जम्मू और पंजाब की खबरें ढूंढ कर पढ़ रही थी। दो एक महिला साधु शक्ल से नई और जूनियर लग रही थी। चारू चुपचाप नमस्कार कर बाहर निकली। एक साधुनी उसके साथ आई। पूछने पर उसने नाम बताया, प्रेमदासी। असली नाम? यही। आश्रमी नाम? यही। तभी दो युवा साधु दौड़े दौड़े आए। मैनेजर साहब ने बुलाया है, देसी घी का कनस्तर खोलना है। खोल रहे हैं, कोई भागे नहीं जा रहे, साधुनी ने कहा। जल्दी चलो, यज्ञ की तैयारी करो जाकर। साधु डपट कर चले गए। साधु स्त्री ने दांत पीसे, सब काम हमारे भत्थे डाला हुआ है, इनको तो चिलम चढ़ाकर गर्मी आ जाती है, हमारा पूरा मरण है यहाँ। हम तो टेंट नंबर 6 में है, रात में बालू की ठंडक से हड्डी हड्डी जम गई है, घर से दूर आकर मिट्टी खराब कर ली हमने। पता चला ये स्त्रियां सारा दिन सेवा में लगी रहती हैं। इनकी दिनचर्या जो प्रयाग में है वही हरिद्वार में वही ऋषिकेश में। तारा डूबने से पहले स्नान करती हैं, स्वामी जी देर से उठते हैं, उनके उठने तक पूरे आश्रम की सफाइयां, हवन की तैयारियां, दूध चाय का इंतजाम। कितना दूध पी लेते हैं स्वामी जी, चारू ने शरारत से पूछा। 5 शेर, एक बार में शेर पक्का पीते हैं। कहां से आता है? भगत लोग दे जाते हैं रोज, किसी दिन कम आए तो रामघाट पे घुसी है। बाजार की तरफ घूमी हो, बड़ी रौनक है। नहीं, सेवा से फुर्सत नहीं। रामलीला देखी? मुरारी बापू का प्रवचन सुना? नहीं, सेवा जो करनी हुई। इतनी सेवा करनी पड़े तो शादी क्या बुरी थी, चारू ने कहा। आदमी किसी काम का होता तो यहाँ क्यों आती? पति सेवा और संत सेवा में कोई फर्क दिखता है? बिल्कुल, स्वामी जी कभी हाथ नहीं उठाते, मीठा बोलते हैं। आदमी बात बात में लड़ता था, कौन जन्म भर मार खाता, यहाँ चैन है। घर कब छोड़ा? 11 साल पहले। तभी अंदर से स्वामिनी जी की आवाज आई, प्रेमदासी। कपकपाती ठंड के बावजूद मेला क्षेत्र में ठंड कुछ कम लगती। इतने इंसानों की एक दूसरे से निकटता, उनकी सांसों की गर्मी और असंख्य बल्बों की रोशन गर्माहट। इस बीच शिविर में एक भव्य सी युवती आ गई, स्वामी मौन सुंदरी। उसने 31 साल की उम्र में ही संसार से विरक्त होकर संन्यास ले लिया, लेकिन अभी वह पूरी तरह से इस संप्रदाय में समाई नहीं है। बीच बीच में विदेश चली जाती है। उसका गेटअप प्रभावशाली था, 9 मीटर का गेरुए पॉलिस्टर का गाउन देखने में ड्रेसिंग गाउन ज्यादा लग रहा था। बालों में लाल मेहंदी, होठों पर नेचुरल शाइन कलर, नाम के विपरीत वह मुखर सुंदरी निकली। चारू से बहुत जल्द खुल निकली। उसका बोलने का अंदाज बड़ा आकर्षक था, हालांकि बातों में परिपक्वता की कमी। आपका ध्यान जरा भी भटका कि वह कहती, यू आर नॉट वाइब्रेटिंग विद मी। उसने बताया, आई एम स्टिल सर्चिंग अ परफेक्ट गुरु, आई हैवन्ट फाउंड। आप अपना समय नष्ट कर रही हैं, चारू ने कहा। उसे अफसोस हो रहा था कि इतनी अच्छी महिला एक व्यर्थ तलाश में तल्लीन है, इसे तो जिंदगी के बीचों बीच होना चाहिए। मौन सुंदरी ने कहा, कल मौनी अमावस्या है, हम सबको मौन रहना है। आज सारी रात मैं बोलूंगी, तुम सुनोगी? एज लॉन्ग एज आई वाइब्रेट। ये स्वामी जी कैसे हैं? अच्छे हैं पर अहंकारी हैं। इससे पहले कहाँ थी? स्वामी रामानंद के साथ। वे भी अच्छे थे पर उन्हें भी देह की दानवी भूख थी। आई टेल यू, एक रात में उन्हें जय कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी समझा रही थी। मुश्किल से 9 बजे थे, उन्होंने मेरे चोंगे में हाथ डाल दिया। बाय गॉड, मैंने प्रोटेस्ट किया तो बोले, कौन देखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने उन्हें बदनामी का डर दिलाया, वे हंसे। कैंप में सब बुढ़िया भक्तिन हैं, खा पी कर सोई हैं। मैं विरक्त हो गई, मेरा शरीर मेरा है, मैं इसका बदइस्तेमाल नहीं होने दूंगी। क्या फर्क पड़ता है, अब तुम कुंवारी नहीं हो, कहकर वे मुझ पर हावी हो गए। उस अनुभव के बाद तो मैं सिनिक हो गई। कनखल में उन्हें ढूंढती मैं गाती रहती, कहां गिराई चड्ढी मैंने, कहां गिराई चोली, मैं तो राम नाम में होली। चारों विस्मित श्रोता बनी रही। स्वामी मौन सुंदरी ने कहा, जानती हो, एक मिनट को यहाँ बत्ती चली जाती है तो कितने बलात्कार हो जाते हैं इस बीच। यू आर ऑब्सेस्ड, चारू ने कहा। उसे यह मौन नहीं मुखर सुंदरी लगी। यू आर कैलस, स्वामी मौन सुंदरी ने कहा। मौनी अमावस्या पर भीड़ उमड़ी और घटाएं घुमड़ी। 8 बजते तक झमाझम बारिश हो गई। जो बारिश से पहले नहा लिए वे तो सकुशल अपने कैंप में लौट आए। मुश्किल बाद में जाने वालों की हुई। चारू सुबह कैंप में नल पर नहा ली, वह भी तो गंगा जल ही था आखिर, पर तट पर घूमने का मुंह वह नहीं छोड़ सकी। एक की जगह दो दो शॉल बदन पर लपेट कर वह जाने लगी तो चरनी मासी ने कहा, इकली जा रही है, गवाच जाएगी। मैं सुई नहीं हूँ मासी, मैं चला नाल। ना बाबा, आपसे चला जाता नहीं, गिर जाएंगी। मौन सुंदरी ने साटन रजाई में से अपना सिल्की चेहरा निकाला। मैं चलती हूँ, ठहरो। उसने झटपट गाउन पहना, लंबे बालों की ऊंची नॉट बनाई, गेरुए रंग की चप्पलें पैर में डाली और तैयार हो गई। संन्यास में भी वह विन्यास के प्रति सचेत थी। भक्तों के उमड़ते रेले देखकर वह प्रफुल्ल हो गई। देखो चारू, मैं इस प्रोफेशन को क्यों पसंद करती हूँ। इस करोड़ की भीड़ में अगर 500,000 भी मेरे अनुयायी बन जाएं, तो मैं दूसरी रजनीश मानी जाऊं। है इतनी संभावना किसी और पेशे में? अध्यात्म को पेशे के रूप में लेना गलत है, चारू ने आहत होकर कहा। यह तो अंदर की आस्था से विकसित होने वाली वैचारिक आत्मिक सामर्थ्य है। शिट, इट्स अ प्रोफेशन। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हें खबर ही नहीं, यह इस समय मिलियन डॉलर प्रोफेशन है। ज्यादा बात करना संभव नहीं था। भीड़ उन्हें कभी आगे तो कभी बगल में धकेल रही थी। लोग जैसे एक धुन में बड़े चले जा रहे थे। रास्ते में पुलिस के पथ प्रदर्शकों की मदद से वे काफी आगे सही दिशा में पहुंची। अद्भुत दृश्य उपस्थित था। एक पसारा, स्नान ध्यान, अर्पण तर्पण, दान पुण्य का। एक नाव वाले से पूछा, उसने किराया बताया 15 रुपए सवारी। चारू ने कहा, नगर पालिका तो 3 रुपए सवारी रेट बताए है। 3 रुपए तो सिपाही ले लेते, नाव वाले ने कहा। नाव स्त्रियों से खचाखच भरी थी, वे दोनों भी सवार हो गई। बारिश अब भी हो रही थी, एक तरह से सबका स्नान हो रहा था। फिर भी संगम की धाम का संस्पर्श पाने को आतुर थी स्नानार्थी। नहाकर गीले कपड़ों में ही सब नाव पर सवार हो गईं। सबने अपनी गंगाजली भी संगम जल से भर ली। कृष्णकाय मल्लाह भरपूर ताकत से नाव खे रहा था, लेकिन नाव का संतुलन गड़बड़ा रहा था। उन्होंने देखा स्त्रियां मौन भाव से बैठी थी, सबकी मुख मुद्रा शांत अविचलित। अभी तक दूर ही था कि नाव एक ओर बिल्कुल ही झुक गई। लगा कि सबको जल समाधि मिलने में बस क्षणांश का ही विलंब है। मौन सुंदरी और चारू के मुंह से चीख निकली, बचाओ, नाव डूब जाएगी भैया। मल्ला अपने दो पैरों के बीच बृहत्तर अंतराल के दोनों ओर के चप्पू चला रहा था। शेष स्त्रियां कैसे बोले, उन्होंने मौन व्रत धार रखा था इस घड़ी, पर उनकी आंखों में दहशत उतर रही थी। मौन सुंदरी नाव में खड़ी हो गई। अरे कोई है, नाव डूब रही है, मर जाएंगे हम लोग। स्त्रियों ने त्योरी चढ़ाकर इन दो महिलाओं की ओर देखा। शोर मचाकर ये अपने प्रति पाप का प्रयोजन जुटा रही थी, साथ ही उनके व्रत में भी विघ्न डाल रही थी। जो स्त्रियां उठंग छोर पर आसीन थी, आग्नेय दृष्टि से उन्हें देख रही थी। तभी संकट पहचान कर रिवर पुलिस की मोटर बोट उनकी नाव के साथ आ सटी। सिपाहियों ने सहारा देकर सभी सवारियों को मोटर बोट में पहुंचाया। दो वृद्धाएं पानी में फिसल गई थीं, उन्हें भी बचा लिया गया। रिवर पुलिस की मोटर बोट बिना रोक टोक किनारे तक पहुंच गई। चारू ने देखा सभी सवारियां एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। मौन रोदन, जिसमें शब्द की जगह सिसकियां थी, अश्रु की जगह आंखों में भय। चारू ने खैर मनाई कि मासी बारिश से पहले आधी रात के मुहूर्त में ही स्नान कर आईं। वे साथ होती तो दहशत से अधमरी हो जाती। मौन सुंदरी रास्ते भर वापसी में स्त्री स्नानार्थियों की मूर्ता और निरीहता पर खींचती रही। हैरानी तो यह है कि यह इन स्त्रियों का स्थायी भाव नहीं है। अपने घरों में ये अपने बेटे बहुओं को खूब डपटती होंगी, पोतों पोतियों को घुड़कती होंगी, पर इतनी सारी अग्निमुखी उग्रमुखी औरतें संतों के आदेश पर होड़ सिल लेंगी, जान निकल जाए बोलेंगी नहीं। लौटकर शिविर का भोजन रोज से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। पूरे 5 घंटों की आज कवायद जो हो गई। राजमा, गोभी मटर की सब्जी और गाजर का हलवा बना था। चारू से आलती पालती मारकर नहीं बैठा जाता। जैसे ही उसने कौर तोड़ा, खाना परोसने वाले सेवादार ने डांटा, उल्टे पांव पंगत में बैठी हो, कहां से आई हो, भोजन का कायदा नहीं मालूम। पैरों में दर्द है, पालथी नहीं लगती। पास बैठी बलिष्ठ औरत ने झट से उसके पांव खोल पालथी लगा दी। नहीं, उल्टे पांव पंगत में नहीं बैठ सकते। इस मौनी अमावस्या का महात्म्य और भी बढ़ गया, क्योंकि यह सोमवार को पड़ी, सोमवती मौनी अमावस्या। अगले दिन का तुमलनाथ पिछले दिन के मौन का उपहास करने लगा। गौरा ने सवेरे ही विलाप शुरू कर दिया, हाय नहीं मैं मर जावा, कल नांदे वेले कोई मेरी कलाई से कड़ा उतार कर ले गया, पूरे 4 तोले दसी। सत्या और गौरा का दिन रात का साथ था, दोनों होशियारपुर की थी। तेरे हाथ में तो रुमाल बंधा था, कड़ा कदो पाया सी, ले, मैं झूठ बोल दिया? पानी गंदरा था, रेत की दलदल में कमर तक धस गई थी गौरा। दो आदमियों ने पकड़ कर निकाला था उसे। कैंप में लौटकर टोटी के नीचे नहाई। कल तो तूने बताया नहीं, संतों ने कहा था चुप रहना, किद्दा दस दी। सबने हिसाब मिलाया, सबके चेहरों पर बदहवासी। पंडे से लेकर नाव वाले तक ने लूटा, बचा खुचा गंगा मैया ने। डुबकी लगाई, गले से कंठी गायब, कहां गई कुछ खबर नहीं। कोई अचानक से उतार ले गया, हवा से भी हल्का हाथ रहा होगा उसका। रपट क्या लिखाए, कुछ पता हो तब ना। कहां गिरी, किसने छीनी, कर्मा मिया गलना। लाल सड़क पर स्वामी सुरेशानंद के शिविर के बाहर एक औरत बिलख बिलख कर रो रही थी। नाम अमरो, जिला जालौन। पति साथ आया था, कल की धकापेल में बिछड़ गया, जमा पूंजी सब उसी के पास है। एक सिपाही उसे भूले भटके शिविर में बैठाया। लाउडस्पीकर पर उसके पति के लिए मुनादी करवानी थी। अनाउंसर ने पूछा, आदमी का नाम? हाय दैया, कैसे बोले? नाम नहीं बोलोगी तो बाजे पर क्या बोलेंगे हम? कौन आए? अमरो धोती का एक सिरा दांतों में दबा लेती है। अच्छा, नाम नहीं ले सकती, कुछ अता पता दो। अमरो आसमान की ओर इशारा करती है। सूरज? ना। चंदा? वही दैया, नाम बोला जाता है चंदा दीन। दो दिन बीत गए, अमरो का पति नहीं आया। प्रशासन का कारिंदा कहता है रेल किराया देंगे, घर चली जाओ। नहीं, जब तक बुलाने नहीं आएंगे वह नहीं जाएगी। सात फेरे वाली हैं हम, कोई नचनी पतुरिया नहीं। गंगा मैया हमरा भतार भेजे, नहीं हम यही माँ कूद कर पीरान दे देबे। ना जाने कितनी अबोध लड़कियां पाई गई हैं कल। गंगा स्नान के बहाने घर वाले लाए घर से और छोड़ गए मझधार। जल पुलिस ने बताया 22। ये सब पीड़ा के प्रसंग है, इनके सही आंकड़े और ब्योरे प्रशासन की फाइलों में है। मासी की ऐनक बनकर आ गई है सत्य के स्कूटर पर। वापस घर जाते जाते चारू सोच रही है, इतना विशाल मेला क्या कुछ भी कालातीत सिखा पाएगा, या सब वैसे के वैसे अपने संकीर्ण सरोकारों में वापस हो जाएंगे। जो झूठ बोलता था बोलता रहेगा, जो घूस लेता था लेता रहेगा, जो मिलावट करता था करता रहेगा, जो चोरी करता था करता रहेगा, और जो काम चोरी करता था करता रहेगा। औरतों के जीवन में इस एक डुबकी से क्या हो जाएगा, उनकी हालत बदलेगी? गंगा माई में पाप सचमुच धुले, क्या यह भी एक सरलीकरण है जिसकी सहमति में ही फिलहाल वे निष्कृति ढूंढ रही है। गाथा में अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी मेला, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।